सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। विशेष तौर पर आज का जो सत्र है, इट इज सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। हम अपने जीवन को उत्सव में कैसे बनाएं, हम एक ईश्वर की याद में गीत से शुरुआत करेंगे, फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम सभी सीधे बैठें। उस परम कलाकार, उस परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु परमात्मा की याद और स्मृति से आज का ये सेशन शुरुआत करेंगे।
Okay। ओम शांति। अभी हम ऐसी अनोखी विशिष्ट विभूति से रूबरू होने जा रहे हैं जो आप देख ही रहे हैं, बहुत सिंपल, जिनका व्यवहार भी है, जीवन भी है, लेकिन ज्ञान रत्नों पर आपका स्वामित्व है। ऐसे आदरणीय स्वामीनाथन जी, जो आप एक लेक्चरर थे, तो उनका हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से 1994 से जुड़े हुए हैं। आपको दो अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं, सनराइज पीस अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंसी से आप सम्मानित हैं। आप आईआईटी मुंबई, आईआईटी खानपुर, आईआईटी खड़गपुर में स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी। आपने टीवी टॉक शो में भी अनेक लोगों को लाभान्वित किया है। आपने अनेक कॉलेजेस, कंपनीज, हॉस्पिटल्स और आर्मी, नेवी और पुलिस में भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपने 150 से भी अधिक कॉन्फ्रेंसेस में अपने वक्तव्य दे चुके हैं। आप 6 वर्ष पूर्व कॉलेज से रिजाइन दे ईश्वरीय सेवा में पूरा अपना इस जीवन को सहयोग के रूप में समर्पित कर चुके हैं। और ऐसे अपने प्रोफेसर स्वामीनाथन जी का आपने टॉपिक तो सुना कि अपने जीवन को कैसे हम हंसते हंसते जिए, खेल खेल में, तो ऐसे स्वामीनाथन जी को हम विशेष आप करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से, भरोसा रख खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वह सही वक्त आने पर, सही वक्त आने पर।
ओम शांति। इज माई वॉइस ओके? आप में से कितने भाई बहनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो हाथ उठाएं। ओके, इज माई वॉइस ऑडिबल? यस और नो, जवाब नहीं देते। इज माई वॉइस स्वीट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हम कलाकार जब स्टेज पर आते ना तो माइक को टेस्ट करते, माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। माइक तो काम करेगा ना, और माइक ऊपर नीचे होगा तो उसको ठीक करने वाले हमारे भाई है ना। हम कलाकारों को क्या करना चाहिए? अपनी वाणी पर चेक करना चाहिए कि इज माई वॉइस स्वीट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज माई वाइब्रेशन स्वीट? मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति वो ठीक है कि नहीं, ये चेक करना जरूरत है। चलिए दोस्तों, आज की जो सेशन है, हम जीवन को उत्सव में कैसे बनाएं, मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करता हूं। ये कहानी मुझे बहुत बहुत पसंद आती है। एक बार क्या हुआ है, एक गांव में एक आश्रम था। उस आश्रम के जो गुरुजी जो थे ना, उनके 2 शिष्य थे, और उन 2 शिष्यों का नाम था रामा और दामा। क्या नाम था? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, रामा जो था ना, वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, हमेशा उमंग उत्साह में रहते थे, और दामा हमेशा नाराज होते रहते थे। सुबह सुबह संदेश जब गुरुजी का पहुंचा तो रामा वॉज वेरी एक्साइटेड, आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे, और दामा हमेशा की तरह सुबह सुबह बुला लिया, अभी क्या बोलने वाले हैं। रामा और दामा जब गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने क्या कहा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग थ्योरी, आज मैं आपको कुछ थ्योरी नहीं सिखाऊंगा, बट आई विल आस्क यू समथिंग प्रैक्टिकल टू डू, कुछ प्रैक्टिकल करना है। तो क्या करना है? तो गुरुजी ने रामा और दामा को ना एक टोकरी दिया, और उसमें रंग बिरंगे फूल थे, और गुरुजी ने कहा आज आपकी सेवा ये है कि आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है, और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है। बस एक छोटा सा कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो। क्या था कंडीशन? हाँ, रामा और दामा गए, एक घंटे के बाद रामा वापस आ गया। अरे गुरुजी, व्हाट अ वंडरफुल सेवा, आई रियली एंजॉयड इट, मैंने खूब एंजॉय किया। तो गुरुजी ने कहा दैट्स ओके, बट वेयर इज योर फ्रेंड दामा? तो रामा ने कहा गुरुजी उनके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, वे इंतजार करते हैं। दोपहर हो गई, दामा नहीं पहुंचा। सूर्यास्त हो गया तो भी दामा का अता पता नहीं। रात को दामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एजिटेटेड, इतने गुस्से में, इतने नाराजगी में। उनके हाथ में टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया। क्या गुरुजी, कितना कठिन काम देते हो। अरे आज के जमाने में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट हो सकता क्या? सच अ टफ चैलेंजिंग टास्क। तो गुरुजी ने कहा लेकिन रामा ने अपना काम कैसे किया? तो रामा को बोला, रामा कम हियर, इधर आइए, आप अपना अनुभव शेयर करिए कि आपने अपना काम कैसे किया। तो रामा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो गांव में जाते थे ना, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए गांव वालों को बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ, गुरुजी ने आपके लिए रंग बिरंगे फूल दिए हैं। गांव वाले रामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे, तो गांव वालों के चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाता था। और रामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में ये फूल पकड़ा देता था। और दामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो दामा का चेहरा देखकर मुरझा जाता था। अच्छा बताइए, हमें रामा बनना है या दामा बनना है? जोर से बोलिए। वाओ, थियोरी में तो सभी पास हो गए, अब मैं प्रैक्टिकल पूछता हूं। अच्छा, इस सभा में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं क्या? आर देयर सम स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या करूं, प्रोफेसर हूं ना, ये तो ये संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते रहते। हाथ उठाइए, हाथ उठाए। हाँ, बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा है, चलो वेरी गुड। अब विशेष बच्चों के लिए प्रश्न पूछता हूं। हाँ, हाथ नीचे रखिए। अब बच्चों के लिए प्रश्न ये है, बच्चों ध्यान से सुनना, जब आपके शिक्षक और आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा जैसे या दामा जैसे? उस दिन मुंबई में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने पूछा रामा या दामा, तो एक माँ खड़े होकर कहती है, स्वामी भाई बच्चों का चेहरा दामा जैसे हो जाता है, कुछ करो ना। चलो, वैसे अपना ये प्रोग्राम तो बच्चों के लिए नहीं है, हम सभी कलाकारों के लिए है। यहाँ पर जो कोई भी कलाकार है वो हाथ उठाओ। अरे भाई सभी हाथ उठाइए ना, सभी अपने अपने क्षेत्र में कलाकार हैं, है ना। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, आपको पता नहीं होगा, है ना। यस, इट्स अ वेरी वंडरफुल आर्ट, ठीक है ना। अच्छा, आप सभी कलाकारों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं। जब आप कोई भी परफॉर्मेंस करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप कोई भी परफॉर्मेंस करते हो, कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे अगर हो जाता है, बीच में कभी माइक नहीं चलेगा, ऑडियो सिस्टम नहीं चलेगा, LCD काम नहीं करेगा, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, लास्ट मिनट में एक अकंपनिस्ट नहीं पहुंचा है, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, रामा जैसे या दामा जैसे? जोर से बोलिए। वाओ, सभी पास हो गए, राइट। इसको लाइफ में जरूर जरूर अप्लाई करना, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। जीवन में दोस्तों कुछ भी करें ना, खुशी से करें। जीवन में हम कुछ भी करें, इसको बहुत बहुत आनंद के साथ करें। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जीवन में इतनी चैलेंजेस होते हैं, हमको लगता है हमारे जीवन के ये सारे प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएंगे ना, तब हम खुश रहेंगे। और खास कर लोग इसलिए कलाकारों के पास जाते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कोई भी कला क्यों ना हो, लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी में होते हैं और उनको लगता है कि मैं इस कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने दुखों को भूल जाऊं और अपने लाइफ को शायद उस समय बना सकूं, ये वो फील करते हैं। और आज दुनिया की सिचुएशन क्या हो गई है, अगर हम पूछें तो कहते हैं हर साधन है लोगों के दामन में लेकिन मुस्कुराहट के लिए वक्त नहीं। हर साधन है लोगों के दामन में लेकिन मुस्कुराहट के लिए वक्त नहीं। इस दौड़ती भागती दुनिया में सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। आंखों में है नींद भरी लेकिन सोने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या बात करें कि अपने सपनों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। मां की लोरी का एहसास तो है, मां की लोरी का एहसास तो है, लेकिन मां को मां कहने का हमारे पास वक्त नहीं। तू ये बताए जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को एक पल जीने का वक्त नहीं, एक पल जीने का वक्त नहीं। ऐसी सिचुएशन हो गई है। शायद मेरी भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी जब मैं इस विद्यालय में करीब 18-19 वर्ष पहले आया था, और मुझे लगता था जीवन में इतनी चुनौतियां जब ठीक होगी तो मैं अपने जीवन को उत्सवमय बनाऊंगा। लेकिन जब इस विद्यालय में आया तो मैंने महसूस किया कि यह गलत सर्किट डायग्राम है, इट्स अ रॉन्ग सर्किट डायग्राम। सही सर्किट डायग्राम यह है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा जीवन उत्सवमय बन जाता है। इफ यू आर हैप्पी देन वी विल बी एबल टू सेलिब्रेट आर लाइफ, देन वी विल बी एबल टू ओवरकम आर चैलेंजेस। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो थोड़ा सेलिब्रेशन की तरफ भी लेकर आएंगे, और यह एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे कहते हैं जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए जान है तो। हाँ, आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवल एकेडमी, तो जब मैंने पूछा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडर वॉज वेरी हैप्पी। राइट आंसर, राइट आंसर। तो अपने जहाज को थोड़ा सीधे रखिए, हम सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं ना। कोई जहाज इधर उधर डोल रहे हैं, थोड़ी नींद वींद आ रही है, तो थोड़ा सीधे बैठे। हाँ ठीक है। अब एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी विद्यालय से मैंने सीखा हूं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज विच विल गिव एनर्जी टू योर जहाज ऑल्सो, आपके जहाज को भी एनर्जाइज करेगा। हमको पता है हमारे शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ में है, राइट। अगर आप ये एक्सरसाइज अब घर में जाकर करेंगे ना तो आपका घर का वास्तु हीलिंग भी हो जाएगा। पहले आप ये एक्सरसाइज देखना फिर आप करेंगे, ठीक है। आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे लेना, पहले देख लेना, अपना फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करना, राइट, और कहना वाह 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 मैं कलाकार, वाह 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 करना। मैं देखता हूं हमारे बच्चे जब सुबह सुबह एक दूसरे से मिलते हैं ना तो शुरुआत कैसे करते हैं, हाय हाउ आर यू, ये हाय हाय नहीं करो, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं, हाय इतनी गर्मी, ये हाय हाय से कुछ होगा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चों, सुन रहे ना मीठे बच्चों, कौन कौन सुन रहे वो हाथ उठाए, वेरी गुड, राइट। तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चों अब ये हाय हाय बंद करो, अभी वाह वाह करने का टाइम हो गया, बहुत खुशी से करना, ठीक है। तो वाह 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 देख लेना पहले, वाह 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 मैं कलाकार, वाह, फील गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट। फिर दूसरा लेना, वाह 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 ये रंगमंच, वाह बहुत वंडरफुल रंगमंच है। शेक्सपियर कहते हैं द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मेन एंड वेमेन आर मेयरली प्लेयर्स, सृष्टि एक बहुत सुंदर रंगमंच है और हम सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, राइट। तो दूसरा वाह ये रंगमंच, वाह। तीसरा वाह 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 मेरा पार्ट, वाह। हम कलाकारों को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, वाह मेरा पार्ट, वाह। कुछ समय तक हम लोग पार्ट बजाएंगे, स्टेज में आएंगे, कुछ ऐसा समय भी आएगा जब हमें नयों को चांस देना चाहिए, नयों को। हमसे अच्छे कलाकार आएंगे, हमसे और श्रेष्ठ कलाकार आएंगे, हमसे छोटे आएंगे, हमसे ज्यादा कुशल कुशलता उनमें होगी, और जब नए कलाकारों को आप देखेंगे ना, अच्छा फील करना, खुशी का अनुभव करना, और क्योंकि हम अनुभवी हैं तो उनको बहुत दुआएं देकर आगे बढ़ाना, और हम सामने बैठकर उनके उस कला को देखकर अच्छा फील करें, वाह मेरा पाठ, वाह। हम कलाकारों में एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, और जब कोई नया कलाकार आता है ना तो हमको बहुत फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, हमें डर लगता है, हमें ये डर लगता है कि ये आगे ना बढ़ जाए। और जिस दिन हमारे अंदर ये इनसिक्योरिटी निकल गई ना, आप देखेंगे हमारी कला में इतनी निपुणता आ जाएगी, इतनी दिव्यता आ जाएगी, उसमें इतनी श्रेष्ठता आ जाएगी, राइट। इसे कभी भी वी शुडंट एवर ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इन आवर लाइफ, क्योंकि जैसे ही नए आए You need to elevate yourself to a higher platform. ये बहुत बहुत important है। इसे वाह मेरा पाठ, वाह। फिर चौथा लेंगे वाह 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 ऑडियंस, वाह। ऑडियंस को भी वाह वाह करना, जब भी आप कोई कला का प्रदर्शन कर रहे हो। कुछ लोग होंगे जो शायद आपके लिए ऑटोग्राफ के लिए आपके पास जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, ओके, एवरीवन इज परफेक्ट, एक्सेप्ट देम, ठीक है, वो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे, अपने हिसाब से वो कह रहे हैं, एक्सेप्ट करिए। और लास्ट वाह 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 वो परम कलाकार, वाह। ये पांच एक्सरसाइज, पांच स्टेप है, सभी करेंगे? कौन कौन करेंगे वो हाथ उठाएं, और जो भी करेंगे वो कलाकार हैं विशेष, ठीक है? चलो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट फिंगर से करेंगे, वाह 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 मैं कलाकार वाह। कुछ लोग वाह मैं कलाकार वाह, एनर्जी नहीं है। अब भाई हमारी ये एनर्जी होगी तो सामने वालों को कैसे उमंग उत्साह करेंगे ना। अब सारे जो ऑडियंस बैठे वो आपको देख रहे हैं, उनके जीवन में इतना दुख है, वो आपके उस परफॉर्मेंस से खुशी आनंद जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए तो बैठे हैं। इसे अच्छे आप फील करना। ओके अगेन वी स्टार्ट, वाह 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 मैं कलाकार वाह, वाह 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 ये रंगमंच वाह, वाह 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 मेरा पाठ वाह, वाह 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 ऑडियंस वाह, वाह 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 वो परम कलाकार वाह। जोर से तालियां बजाइए, ठीक है ना। चलिए इस वक्त जब हम लोग इतने वाह वाह कर चुके तो मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे कलाकार को बुलाऊंगा। मेरे बहुत अच्छे प्रिय दोस्त और मित्र हैं, और वो हैं हमारे आदरणीय विकास भाई। तो मैं चाहता हूं जिंदगी को सेलिब्रेट करने के पहले हम आदरणीय विकास भाई को बुलाते हैं, राइट? वैसे समझने की बात यह है, विकास भाई कहां पर हो? अच्छा, विकास भाई यहां पर है। विकास भाई के लिए जोर से तालियां बजाइए। वैसे अपने जीवन को ना बहुत रंगों से भरना चाहिए, तो आज मैं सोचता हूं है ना कि भाई आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग। हाँ, मैं कुछ समय से म्यूजिक को सीख रहा हूं, एंड आई लव टू प्ले फ्लूट। और मैं वाशी जो नवी मुंबई के गांधर विद्यालय का स्टूडेंट भी हूं, राइट? मेरे ख्याल से कुछ वर्षों के बाद काफी साधना की जरूरत है जहां पर मैं शायद वो फ्लूट को लेकर ज्ञान सरोवर के सुंदर से पवित्र मंच में आ पाऊंगा। लेकिन जब तक मैं नहीं आता हूं तो हमें इन कलाकारों को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना चाहिए जो बहुत अच्छा गीत गाते हैं। हमारे आदरणीय विकास भाई इस सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस में हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और मैंने कहा कि आप है ना अपने गीत के रंगों से इसको भरिए। तो विकास भाई बहुत सुंदर से गीत गाएंगे। और हाँ, विकास भाई कह रहे हैं स्वामी सर है ना करीब 11:30-12 बजे का टाइम है, इसमें जहाज थोड़ा हिलने डुलने का चांसेस है। आपको कैसे पता है? अच्छा दिख, अच्छा अच्छा है। एक बार एक प्रोफेसर क्लासरूम में गए तो क्या देखा कि एक क्लास में एक स्टूडेंट आराम से सो रहा है। तो प्रोफेसर ने स्टूडेंट को उठाया, प्लीज उसके बाजू वाले फ्रेंड को बुलाया, क्या आप देख नहीं सकते हो आपका बाजू वाला स्टूडेंट सो रहा है, प्लीज वेक हिम अप। तो वो बाजू वाला उसका जो फ्रेंड था वो खड़े होकर कहता है, सर यू हैव पुट हिम इन टू स्लीप, बेटर यू वेक हिम अप। आपने उसको सुलाया है, ये आपकी जिम्मेवारी को उसको उठाना चाहिए। तो विकास भाई कह रहे हैं कुछ लोग जहाज इधर उधर डोल रहा है, वो कह रहे हैं प्रोफेसर ये आपकी जिम्मेवारी है।
नहीं नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है।
कोई बात नहीं, आप सभी अपने सुंदर से जहाज को उठाइए,
आप सभी खड़े हो जाएंगे, हम सभी एक्सरसाइज भी करेंगे, एंजॉय करेंगे।
चलिए वेरी गुड, अब मैं भी करूंगा आपके साथ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए। जिंदगी का एक बहुत अच्छा गीत है, इस गीत को हम एंजॉय करेंगे।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। Thank you. जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। मैं गरना की ले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा।
नेक्स्ट मंजिल बहुत दूर है लेकिन हमें थकना नहीं है।
काफी हो मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिली तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
लोगों को जिंदगी से शिकायत होती है, मेरे तो नसीब ही ऐसी है, मेरे तो तकदीर ही ऐसी है। उनके लिए
जिंदगी एक पहेली भी है, दुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, दुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी
ओम शांति। थैंक यू सो मच।
हम विकास भाई का बहुत बहुत जोर से तालियां बजाकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा वंस मोर है, दैट्स अ वेरी गुड ऑडियंस। वाह मेरे ऑडियंस वाह, है ना। यस, एक अच्छे ऑडियंस की ये निशानी है, अप्रिशिएट करना। अच्छा उस विकास भाई ने जो गीत गाया ना उसमें एक बहुत अच्छा लास्ट स्टेटमेंट था, जिंदगी एक पहेली भी है। तो चलिए मैं आपको एक सुंदर सा पहेली पूछता हूं और पहेली की भूमिका तैयार करता हूं। छोटा सा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वो खिलौने से खेलता है और जब वो खिलौने से खेलता है ना बहुत खुशी का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है और अचानक उसकी खिलौना टूट जाती है। तो जब खिलौना टूटता है तो वो बच्चा जो होता है नाराज हो जाता है, निराश हो जाता है, रोने लगता है, दुखी हो जाता है। अब जब वो बच्चे का खिलौना टूटा तो उसकी जो बड़ी बहन है ना, शी इज अराउंड 14 to 15 years, 14-15 साल की उसकी जो बड़ी बहन है, वो दौड़कर भाई के पास आती है और कहती कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं माय डियर यंग ब्रदर, वो तो खिलौना है ना, वो तो टूट गया है, नए खिलौने ले आएंगे ना, आप रोते क्यों हो। छोटा सा बच्चा जो है रो रहा है, लेकिन उसकी बहन आकर उसको समझाती है कि ये तो खिलौना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो 15 साल की जो बच्ची होती है ना, शायद उसके एग्जाम्स में मार्क्स कम हो जाते हैं या रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो 15 साल की बच्ची बहुत निराश हो जाती है। तब हम बड़े क्या करते हैं, हम उस बच्चे के पास आकर क्या समझाते हैं, नहीं एग्जाम तो चलता रहता है, ओके आप अगले एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेना। अब सोचने की बात यह है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, हम क्यों नाराज हो रहे, हम क्यों दुख का अनुभव कर रहे हैं? और अगर हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, राइट, इसका मतलब है कि शायद मैंने अपनी स्थिति को नहीं बढ़ाया। जैसे वो छोटा सा बच्चा खिलौना टूटते हुए भी उसको लगता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा लाइफ है। लेकिन जब हम बहुत मैच्योर होकर उस सिचुएशन को देखते हैं, हम कहते हैं इट्स जस्ट अ स्मॉल सीन, ये पूरे विश्व के ब्लूप्रिंट में बहुत छोटा सा सीन है, उसमें दुख होने की कोई बात ही नहीं है। उसी तरह आज मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मैं उस राज को, उस पहेली को नहीं बुझा पाया हूं, राइट। और ये पहेली कौन सी है, व्हाट इज द पजल ऑफ लाइफ? मैं आपको एक छोटा सा आर्ट एंड कल्चर के इसमें एक बहुत सुंदर, एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है, वो है मूवीज, फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान है, राइट। तो मैं एक छोटा सा बहुत सुंदर सा एक फिल्म मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे कहते हैं महात्मा गांधी जी ने, अब सोचने की बात यह है, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में एक ड्रामा देखी थी, एक नाटक देखी थी, उस नाटक का नाम था राजा हरिश्चंद्र। और महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रुथ में ही अपना अनुभव लिखते हैं। जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र देखा और वो जो ड्रामा का जो इंपैक्ट महात्मा गांधी जी के ऊपर मन पर इतना ज्यादा पड़ा, उनके मानस पटल को इतना झंझोर दिया कि महात्मा गांधी जी ने सत्यता को अपना सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र बनाया। सोचने की बात यह है कि एक राजा हरिश्चंद्र के नाटक ने अगर एक छोटे से बालक के मानस पटल पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, सोचने की बात है कि आज हमारे बच्चे सुबह से शाम तक जो फिल्म में, टीवी में, मीडिया में, इंटरनेट में वो देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों कि उनके मानस पटल पर कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। इट कैन हैव सच अ टेरिफिक इंपैक्ट। इसीलिए मूवीज, ड्रामा, मीडिया, इट्स गॉट अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी दादी जी एक बहुत अच्छी बात कहती थी, बड़ी दादी जी, और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। दादी जी जब हम कुमारों का सेशन लेती थी तो दादी प्रकाशमणि जी कहती थी, सिनेमा, सिन की मां है सिनेमा, दादी जी ये बात हमको कहती थी। और आज जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं तो मैं ये फील करता हूं कि कहीं ना कहीं दादी जी जो हमको कहते थे वो एकदम राइट थे। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छे मूवीज भी हैं। जैसे एक मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा अपने लैपटॉप में उसको लोड करता हूं, इट्स ऑलवेज लोडेड इन माई लैपटॉप, और हमेशा मैं वो फिल्म देखता हूं, एंड द ब्यूटिफुल मूवीज, ये सुनते ही साथ आपका चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा। और वो फिल्म का नाम है तारे जमीन पर, राइट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी, और ये मूवी मुझे बहुत पसंद आती है। इस मूवी का मैं एक छोटा सा एक क्लिप आपको दिखाता हूं, और इस क्लिप में एक बहुत सुंदर पहेली है, बहुत सुंदर सा डायलॉग है, तो मैं चाहूंगा कि इस डायलॉग का अर्थ क्या है आप समझाने का मुझे प्रयास करें। इट्स दैट वंडरफुल मूवी, ईशान और राजन के बीच में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारे इस समय की शिक्षा प्रणाली को भी बताता है। ओके, लेट्स वॉच दैट स्मॉल क्लिपिंग ऑफ दैट मूवी।
यहां आ गया, आओ अपना बस्ता उठा लो, आज से तुम्हारी जगह यहां मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है, राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो ऐसी अपेक्षा करता हूं, समझ गए, बैठ जाओ। कविता पठन और व्याख्यान, आज का विषय 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन आप कविता पाठ करोगे, और ईशान नंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे, ठीक है, शुरू करो राजन।
दृष्टिकोण, ऊपर से देखूं तो है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ही जहां, जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी या कूद के दिखाए ये मेरे साथी, साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी या तिछ पे बरस जाए अंधे की लाठी, तब सबको तू दिखे है पानी सी लगी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी।
बहुत अच्छे। हाँ तो ईशानंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ।
जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। तो मतलब
अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल तुम समझाओ।
कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है।
उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखो
तू है। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए।
इस मूवी में आप में से कितनों ने ये मूवी देखी है वो हाथ उठाए। वेरी गुड, मेजोरिटी ने देखी है, राइट। ये मूवी में आपने देखा होगा दिस ईशान जो कैरेक्टर है ना, ईशान वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज डिसलेक्सिया। पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है, बी का डी होता है, इट्स अ क्लिनिकल प्रॉब्लम। इस पूरे मूवी के कैरेक्टर्स में अगर आप देखेंगे ना, तो उसकी जो माँ जो थी ना, ईशान से बहुत प्यार करती थी। उसके पापा भी उसे स्नेह रखते थे, बस थोड़ा सा व्यवहार में प्रॉब्लम था पापा का। उनके सभी शिक्षक थे, वो ईशान के प्रति ये शुभ भावना रखते थे कि भाई ईशान को अच्छे मार्क्स मिले, इसमें कोई गलती नहीं है, हर शिक्षक चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे नंबर से पास हो। लेकिन ये जो तीनों कैरेक्टर है ना, उन्होंने ईशान के प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए। बस इस मूवी में आप देखेंगे सिर्फ निकुम जो था, निकुम सर जो उनके पेंटिंग के टीचर थे, जिन्होंने ईशान के प्रॉब्लम को समझ पाए। क्यों क्यों? उसकी मां तो बहुत स्नेह करती थी। अच्छा, क्योंकि निकुम सर कलाकार थे। वाह, वेरी गुड। माँ भी तो कलाकार है ना, है ना। माँ भी भोजन बनाती है, पालना देती है, सबसे बड़ी कला है, राइट। क्यों? आपने तो फिल्म देखी है ना। एग्जैक्टली राइट सिस्टर, यू आर राइट। बहन जी ने एकदम सही जवाब दिया। निकुम सर सिर्फ ईशान के प्रॉब्लम को समझ पाए क्योंकि निकुम सर को खुद बचपन में वही प्रॉब्लम थी, और क्योंकि उसको वही प्रॉब्लम थी तो वो सामने वाले व्यक्ति के प्रॉब्लम को समझ पाए, राइट। और क्योंकि वो समझ पाए, कारण पता था, तो उसका निवारण दे पाए। उसकी मां को वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, पापा को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, टीचर्स तो बस लगता था कि वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, राइट। इसीलिए जिस प्रॉब्लम को हम गुजरे हैं ना, उस प्रॉब्लम को जब कोई व्यक्ति सामने वाला गुजरता है ना, वी आर मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इट। एनीवे, ये जो मूवी में जो उसका जो फ्रेंड है राजन दामोदरन, उसको तो डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम नहीं था। फिर वो ईशान को कहता है कि एक्चुअली कविता का अर्थ तो तुमने समझाया है, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। अब बताइए क्या सही उत्तर था। जिंदगी की पहेली तो ये है, जो ईशान कहता है, जो दिखता है हमको लगता है, जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता वो होता है। भाई कौन सा दिखता है क्या नहीं दिखता है, जिंदगी की पहेली है ये। बताइए इस डायलॉग का अर्थ क्या है। वाओ, वेरी गुड है बहन जी, यहां पर आ गए तो राजयोग का इफेक्ट पड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। राजयोग, राज अर्थात उस रहस्य को समझना। और जब से आप यहां पर आए हो ना, इस रहस्य को आप समझ रहे हो कि असल में जो हम दिखते हैं ना, वो एक्चुअली है नहीं। और अक्सर कर हमने अपने आप को आज तक आइडेंटिफाई किया इस फिजिकल सिस्टम के साथ, इस शरीर के साथ जो दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां आकर आपको पता चला कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं, अदृश्य चैतन्य शक्ति जो दिखता नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ राजयोग, राज अर्थात उस रहस्य। इसलिए कहते राजयोग एक जीवन जीने की एक कला है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग लाइफ। इसलिए अब क्या करना है, अगर हमें जीवन को सेलिब्रेट करना है तो हर दिन सुबह उठना और अपने चेहरे को देखना और महसूस करना कि मैं चमकता हुआ सितारा हूं। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जब आप वापस अपने शहर में अपने घर जाएंगे तो आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, पापा आपका चेहरा इतना खिला हुआ कैसे है, रामा जैसे। तो आप कहना, मैं ज्ञान सरोवर गया था ना, वहां मैंने स्वयं को समझा कि मैं कौन हूं। तो बच्चा पूछेगा, पापा आप कौन हो। तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना, अपना हाथ यहां पर बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए पूछना, बेटा आपको पता है आप कौन हूं। बेटा पूछेगा, मामा मैं पापा मैं कौन हूं। हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रेवल। बहुत प्यार से देखकर पूछना, बेटा आपको पता है आप कौन हूं। फिर बेटा पूछेगा, पापा मैं कौन हूं। तो फिर मुस्कुराते हुए कहना, बेटा आप हो तारे जमीन पर। कौन हो, थोड़ा जोर से बोलिए, तारे जमीन पर। आजकल बच्चों का ना स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार। उस दिन प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़े होकर कहता है, सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहा, तेरे को जो स्टार बनना है बन। अब उनको स्टार बनाएगा कौन, वी पेरेंट्स एंड वी टीचर्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हर दिन फील करना। तो मेडिटेशन का ये बेसिक है, वो स्मृति, वो याद, वो कॉन्शियसनेस कि यस आई एम अ रियल स्टार। अभी तक हम लोग कलाकार के हिसाब से लोग हमें स्टार बोलते थे, कुछ समय के लिए स्टार है, कुछ समय के लिए फेडिंग स्टार हो जाते, फिर कोई हमें पूछता ही नहीं है। लेकिन यहां पर आप ईश्वर के घर आए हो तो परमात्मा कहते हैं, यू आर एक्चुअली अ रियल रियल स्टार। और जब आप ये बच्चों को बताएंगे तो बच्चों कहना, ये राज्यों की बहुत बड़ी कठिन फिलॉसफी नहीं है। और जब आप बच्चों को कहेंगे यू आर अ रियल स्टार तो बच्चे कहेंगे, पापा ये तो मेरा LKG का सिलेबस है ना पापा। जो हम यहां मेडिटेशन का जो बेसिक्स बता रहे हैं, इट इज अ LKG सिलेबस। और बच्चों को ये गीत आप हमेशा गुनगुनाना, और जब ये गीत आप गुनगुनाओगे अगली बार तो उसको एक्चुअली फील करना।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तमगमदनिसा सनिदमगरिसा अवरोहणम சமதமதனிசா சனிதமகரிசா அப்ப பௌத பயல் சோஹை லைக் டைமண்ட் இந்த கை, லைக் டைமண்ட் இந்த கை. சுதி பசுகளடி பாத்துக்கோ, சகமகரி சனி சகரி சனிதமதனி சனிரி சனிதமனித கமகரித ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார்.
அடுத்த லாங்குவேஜ்
ட்விங்க்ளு ட்விங்க்ளு லிட்டில் ஸ்டாரு ஹவ் ஐ வண்டரு வாட் யூ ஆரு, அப்பா பௌத வால் சோ ஹை லைக் அ டைமண்ட் இந்த கை. கேரள ட்விங்கிள் 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 லிட்டில் ஸ்டார் ஹவ் ஐ வண்டர் வாட் யூ ஆர், ஓப்பா பௌத வால் சோ ஹை லைக் அ டைமண்ட் இன் த ஸ்கை, ஓப்பா பௌத வால் சோ ஹை லைக் அ டைமண்ட் இன் த ஸ்கை. இது பஞ்சாபி ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ஓஹா ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் ஆஹா ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் ஹவ் ஐ வண்டர் வாட் யூ ஆர், அப்பா பௌத வால் சோ ஹை லைக் அ டைமண்ட் இன் த ஸ்கை, ஆஹா ட்விங்கிள் ஓஹா ட்விங்கிள் 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 லிட்டில் ஸ்டார் ஹவ் ஐ வண்டர் வாட் யூ ஆர், அப்பா பௌத வால் சோ ஹை லைக் அ டைமண்ட் இன் த ஸ்கை, ஆஹா ட்விங்கிள்.
ரைட். तो बच्चों को राजयोग सिखाना है, LKG सिलेबस उनको सब समझाना है, और एक पहेली पूछना बच्चों से, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर तारे जमीन पर आप बैठे हो तो बच्चा कह कीजिए, हाउ आई वंडर वॉट यू आर, ये यू कौन है। हाँ वाओ, सभी कलाकार एकदम एक्टिवेटेड हो गए हैं, एकदम अपग्रेड हो गया फोल्डर सभी का है। हाउ आई वंडर वॉट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, यही तो रहस्य है और यही तो राजयोग है। जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, अपने आप को स्टार समझना और महसूस करना कि वो सुप्रीम डायमंड मेरा पारलौकिक पिता है। इट्स एन एलकेजी सिलेबस। बस यही प्रॉब्लम ये है कि आज हम बच्चों को ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना समझ पा रहे हैं, ना हम टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं, ना हमने खुद समझा है। इसलिए दिस इज द फिलोसफी ऑफ राजयोग। अब जैसे फिजिक्स होता है ना, फिर अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री, उसी तरह हम कलाकारों को क्या करना चाहिए, ये जो स्पिरिचुअलिटी हमने यहां सीखा है ना, उसको अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी में लेकर आना चाहिए। और ये तीन स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज एम आई लुकिंग गुड, राइट। इसलिए आप देखेंगे कोई भी परफॉर्मेंस के लिए जाएंगे ना, तो हम लोग बार बार अपने आप को ना दर्पण के सामने देखेंगे और बार बार सेट करेंगे, एम आई लुकिंग गुड। वैसे अगर आप किसी के शादी में जाओगे ना, तो दुल्हा दुल्हन के साथ आपका फोटोग्राफ लिया जाता है। फिर एक हफ्ते अगर आप उनके घर पे जाएंगे एक हफ्ते के बाद, तो वो क्या करेंगे, आपको है ना एल्बम देंगे, और जैसे आपके हाथ में एल्बम मिलता है आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना फोटो ढूंढते हो, किधर है किधर है किधर, दुल्हा एक तरफ दुल्हन दूसरी तरफ, हाँ मैं बहुत अच्छी दिख रही हूं। लुकिंग गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लुकिंग गुड से आगे बढ़ना चाहिए। वी नीड टू मूव अवे। एंड द सेकेंड स्टेप इज एम आई फीलिंग गुड, राइट। मेरी भावनाएं कैसी है, व्हाट्स माय इमोशंस, फीलिंग गुड। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम आई रियली गुड, क्या मैं सचमुच अच्छा हूं क्या, ये बहुत बहुत जरूरत है। इसे परमात्मा हमेशा कहते हैं, मीठे बच्चों आपके चेहरे और चलन पर विशेष अटेंशन दो, आपका चेहरा हमेशा खुशनुमा रहे। अब जैसे इमेजिन करिए कोई आपको आपका फोटोग्राफ ले रहा है, तो फोटोग्राफ लेते वक्त वो कैमरा पर्सन आपको बताता है, आपको सिखाता है, प्लीज स्माइल प्लीज। अब जस्ट इमेजिन करिए एक मिनट के वो स्माइल से हमारा फोटोग्राफ कितना सुंदर हो सकता है। जस्ट इमेजिन करिए अगर हर पल हम सचमुच आंतरिक स्तर पर खुश रहेंगे, तो क्या हमारा जीवन इतना सुंदर नहीं होगा क्या, सोचने की बात है ना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट्स द वे हाउ वी नीड टू सेलिब्रेट। इसे परमात्मा कहते बच्चे हमेशा खुश रहो और अपने चलन को देखो। और एक श्रीमत जो परमात्मा हमेशा कहते हैं कि बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, प्लीज कभी भी गुस्सा नहीं करना। वैसे आप कलाकारों को तो गुस्सा नहीं आता होगा, आप तो सभी को खुशियां देते हो ना, आपको तो गुस्सा नहीं आता होगा, कुछ बोलते नहीं हमारे कलाकार मित्र भाई बहने हैं, आता है कि नहीं आता है, आता है, माई गॉड सो ऑनेस्ट कलाकार है, योर हार्ट इज सो प्योर। आप में से कितनों को लगता है कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारी कला का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वो हाथ उठाएं। वाओ सो इंटेलिजेंट ऑडियंस है। आप में से कितनों को लगता है कि गुस्सा करने से सारा सिचुएशन ठीक हो जाएगा, वो हाथ उठाएं। अरे स्वामी भाई हमको सब पता है। अब मैं आपसे पूछता हूं गुस्से को कम करने की विधि क्या है, गुस्से को कम करने क्या करेंगे आप भाई सर, हैं? बाप रे राज्यों का अभ्यास करेंगे, हैं? पहली बार आए हो क्या, हैं? हैं? कितनी बार हैं? अच्छा एक साल से जुड़े हुए हो, हाँ वेरी गुड। हाँ जी अच्छा अच्छा टीवी में देखा, अभी प्रत्यक्ष देख रहे हो है ना, बहुत अच्छा राइट। चलो भाई साहब कह रहे एक साल से मैं राज्यों का अभ्यास कर रहा हूं, और आप अपने सही जवाब दिया। मैं कुछ समय पहले भी बिहार बंगाल झारखंड का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, तो वहां मैंने पूछा भाई है ना गुस्से को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो एक खड़े होकर कहता है, एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है सर नवरत्ना तेल लगाऊंगा सर, ठंडा ठंडा कूल कूल। व्हाट एन आंसर, कोई नवरत्ना तेल लगाने से कोई गुस्सा कम होता क्या। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि रायगंज में जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, रायगंज इज इन बिहार, जब मैं वहां प्रोग्राम कर रहा था ना, तो एक बच्ची ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसने लिखा, पब्लिक में नहीं पूछा, क्योंकि मैं सभी माता पिता को कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों के सामने कभी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बच्चों के सामने अगर माता पिता कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं ना, इट विल लीड अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी टू द चिल्ड्रन। तो मैंने उस समय एक स्टेटमेंट बताया था, अगर पति पत्नी के बीच में कभी गुस्सा आता है ना और बच्चे नजदीक है, तो काम करना बच्चों को घर से बाहर भेज देना, बच्चों जाओ खेल कर आओ, और जैसे ही बच्चे गए ढिझुम 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 हो गया आ जाओ आ जाओ, ये मैंने बताया था वहां पर, राइट। तो वहां पर एक बच्ची थी, उसने ना एक ना स्लिप लेकर एक क्वेश्चन पूछा, और फिर से मैं जिंदगी की पहली आपके पास बताता हूं, क्योंकि पहली बार इस 18 वर्ष के इस यात्रा में पहली बार उस बच्ची ने वो प्रश्न पूछा, और इस बच्ची का है ना बहुत वंडरफुल क्वेश्चन था. उसने कहा स्वामी भाई आपने तो ये कहा था कि माता पिता को गुस्सा नहीं करना चाहिए और उस आपके उस प्रोग्राम में मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी. मेरे माता पिता तो वो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं गर्मी की छुट्टी मौसी के घर में आई थी राइट. तो उन्होंने कहा अगर माता पिता आपस में गुस्सा करते हैं तो हम बच्चों को क्या करना चाहिए. दिस वॉज हर क्वेश्चन. क्या करना चाहिए भाई साहब बच्चे को क्या करना चाहिए. क्वेश्चन ये है पति पत्नी क्या करें वो तो ठीक है लेकिन ये बच्ची मुझसे प्रश्न पूछती है कि माता पिता राज्यों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं माता पिता मेडिटेशन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो आश्रम में नहीं आ रहे उनको ये सब कुछ पता नहीं हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं. मैंने आपका सेशन अटेंड किया तो मैं आपसे पूछ रही हूं एज अ स्टूडेंट एज अ चाइल्ड व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. अपने माता पिता को कन्विंस करें. अरे वाह वेरी गुड है. बच्चे माता पिता को समझाएं मामा प्लीज गुस्सा नहीं करो ना पापा ऐसे करें. तो छोटी बच्ची माता पिता को कैसे समझाएंगे ये तो इट्स नॉट पॉसिबल ना. क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए. वाह कितना अच्छा प्रश्न है. मैं रायगंज में एसएमएस करूंगा. वो भाई साहब कह रहे हैं किसी एक को धक्का मार के बाहर भेजना चाहिए है? हाँ एक को हटाना चाहिए ना. हाँ वही हटाना चाहिए दूर करना चाहिए. वाह वाह वाह. अब बच्चों को फिर पहले जिम में भेजना पड़ेगा है. वेरी गुड आंसर है ना. बुद्धि चल रहा है. क्या करना चाहिए बच्चों को. बच्ची क्या करें ये प्रश्न है बहन जी. माता पिता किसी एक को शांत होना वो तो ठीक है बच्ची क्या करेगी. हाँ क्या करेंगे भाई साहब. वन मिनट क्या करना चाहिए. वाओ बच्ची को माता पिता को बिठाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. आप शादीशुदा हो क्या है? नहीं हो. हाँ तो आप काम करना. वेरी गुड. बच्ची को बैठकर माता पिता का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. क्या जवाब देते हो क्या कलाकार हो आप तो. वेरी गुड आंसर है वेरी स्वीट आंसर. बहन जी क्या करना चाहिए. वाओ कितना जवाब. ये थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है. वो बहन जी कह रहे हैं बच्ची को मिरर लेकर माता पिता का चेहरा दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए मामा जब आप गुस्सा करते हो आप कितने सुंदर दिखते हो ना मामा. बहुत अच्छा ये अच्छा प्रैक्टिकल सोल्यूशन. ये सिस्टर वाह बहन जी कह रही बच्चों को रोना चाहिए. वैसे ही वो दोनों रो रहे हैं ऊपर से हम लोग भी. वाह कितना तो के कास्केडिंग इफेक्ट हो जाए है. बच्ची को भी रोना चाहिए. क्या करना चाहिए. वाह बच्ची को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहिए. हाँ ये बात तो राइट है. थोड़ा क्लोजर के साथ मैंने मालूम मैंने क्या जैसे ही उसने प्रश्न पूछा ना दो मिनट के लिए मैं शांत रहा और मैंने कहा उसको पायल आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम समबडी लाइक अ स्टूडेंट लाइक यू हु इज स्टडिंग इन द 10th स्टैंडर्ड इज आस्किंग मी सच अ मैच्योर क्वेश्चन ओके. और मैंने दो मिनट सोचा फिर मैंने कहा अच्छा पायल आप क्या कर सकते हो. तो उसने कहा स्वामी सर मैं तो माता पिता को समझा नहीं सकती हूं ना. मैंने कहा आप देखो पायल मैं आपको समझाता हूं. और ये मैंने उसको समझाया क्योंकि वो 10वीं कक्षा की बच्ची थी तो समझ रही थी और क्योंकि उन्होंने पूरे मेरे 5 सेशन अटेंड किए थे. मैंने कहा पायल आपको लगता है कि आपके माता पिता आपसे बहुत बड़े हैं इसलिए आप उनको समझा नहीं पाते हो राइट. बोले ये इसमें कैसे समझाऊंगी वो तो मेरे पेरेंट्स है ना. मैंने कहा पायल यही राज्यों में मैंने आपको समझाया था कि आप जो हो ना जो दिखते हो वो नहीं हो एक्चुअली. आपका जो शरीर है ना वो करीब 15 वर्ष का है राइट. लेकिन पिछले जन्म में आप दादा दादी हो सकते हो नाना नानी हो सकते हो. तो पिछले वर्ष पिछले जन्म के कुछ 80 वर्ष और इस जन्म के 15 वर्ष यू आर एक्चुअली 95 इयर्स ऑफ एज. तो आप यहां बैठकर वो श्रेष्ठ स्वमान में रहो कि मैं एक दिव्य शक्ति हूं शरीर से भले मैं छोटी हूं राइट. राइट द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू रियलाइज दिस फर्स्ट थिंग. नंबर सेकेंड स्टेप मैंने जो कहा कि आप हर दिन ओके यू बी इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट. आप चाहे कुछ भी हो जाए आप डिस्टर्ब नहीं हो आप शांत स्वरूप में टिको. दैट्स अ सेकेंड स्टेप. एंड द थर्ड स्टेप मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो. यू कैन प्ले द रोल ऑफ फेविकॉल. यू कैन प्ले द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन प्ले अ मैसेंजर. आप एक देवदूत का काम कर सकते हो. आप एक फरिश्ता का काम कर सकते हो क्योंकि बच्चों के प्रति माँ पिता दोनों का स्नेह होता है. तो मैंने कहा दोनों का हाथ पकड़कर है ना, चाहे तो उस नजदीक के विद्यालय में लेकर जाइए, नहीं तो पकड़कर उनको आप ज्ञान सरोवर में लेकर आइए, ताकि यहां बैठकर ये सारी अच्छी अच्छी बातें को समझे। क्योंकि मैं ये फील करता हूं कि अगर एक व्यक्ति को इंजीनियर बनना होगा ना, तो करीब वो 4 साल पढ़ाई करता है और मशीन पर काम करता है। अगर एक व्यक्ति जो होगा वो एनाटॉमी पर काम करना है तो 6 साल का मेडिसिन पढ़ता है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हो तो आप 5 या 6 साल की कठिन तपस्या साधना करते हो। लेकिन जीवन को जीने के लिए, जहां पर हम इतने इमोशनल ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं, हमने जीवन भर कोई विधि पूर्वक ट्रेनिंग नहीं ली है, और यह लेना बहुत बहुत जरूरत है। ओके, सो अब मैं दूसरा प्रश्न पर आता हूं। माता पिता काफी बार कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? काफी बार कहते हैं कि स्वामी भाई मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे ना बहुत अच्छे रहें, लेकिन क्या करूं, वो सुनते ही नहीं मेरे। जैसे एक बार मैं आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम, मेरा टॉपिक था मुंबई में, आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द रोटरी, टॉपिक वॉज सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ योर चिल्ड्रन। आप अपने जीवन को बच्चों के साथ बहुत उत्सव के रूप में मनाइए। तो मैंने पेरेंट्स से पूछा, तो पेरेंट्स ने कहा हमारे बच्चों को हम कितना भी समझाएं ना वो समझते नहीं है। तो मैंने एक पेरेंट्स को पूछा, आप अपने बच्चों में क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू योर चिल्ड्रन? तो वो मां ने कहा बस मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे सुबह टाइम पर उठें, मेरे बच्चे सही काम करें, एवरीथिंग। लेकिन वो काम तभी कर सकते हैं जब बच्चों में वो दिव्य गुण हो, द डिवाइन वैल्यूज। वो डिवाइन वैल्यूज इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जब बच्चों के मन में होगा तभी वो एक्शन में आएगा। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को सेलिब्रेट करना है तो कैन आई फिल माई लाइफ विद डिवाइन वर्च्यूज एंड डिवाइन वैल्यूज। जैसे हम लोग श्रृंगार करते हैं, अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करते ताकि हम बहुत सुंदर दिखें, उसी तरह जीवन को अगर सेलिब्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, हमें अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरना पड़ेगा। और उस रोटरी के प्रोग्राम में जो सारे पेरेंट्स बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप कुछ दिव्य गुण जो अपने बच्चों में देखना चाहते हो बता सकते हो क्या? मैं ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूं, कैन यू टेल मी सम डिवाइन वैल्यूज, डिवाइन वर्च्यूज, कुछ दिव्य गुण आप बता सकते क्या, अच्छे जो आपको लगते हैं? एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैंने पूछा कुछ डिवाइन वैल्यूज, एक खड़े होकर कह रहा सर आउट ऑफ सिलेबस सर, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। अरे यही तो पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को, आप कुछ दिव्य गुण बता सकते राइट है? सहनशीलता, बाप रे एक शुरुआत हुई है, है? जी सर, हाँ आई एग्री विथ यू, क्योंकि बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि माता पिता में कौन से दिव्य गुण होने चाहिए? अरे मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, कौन से दिव्य गुणों की बात कर रहा हूं? स्टार्ट तो हमें सुबह से ही करना है। हाँ वेरी गुड, अब आप पांडव भवन में जाएंगे ना, जब साइट सीइंग पे जाएंगे, आई अप्रिशिएट योर आंसर, शुरुआत की, प्रेम बहुत बड़ा एक दिव्य गुण है। जब आप पांडव भवन में जाएंगे ना, जब आप देखेंगे जहां प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने वहां पे स्टार्ट किया, दादियां थी, तो वहां बहुत बड़ा एक बोर्ड है और वहां पर ना करीब 36 दिव्य गुणों की एक माला है, द डिवाइन वर्च्यूज ऑफ 36। मैं चाहूंगा जो भी पेरेंट्स है ना वहां जाकर उसको नोट करें, अपनी किताब में जरूर लिखें। और मैं चाहता हूं कि हर दिन जब आप बच्चे जब आपका सो जाता है, भले बहुत छोटा बच्चा है चाहे बहुत बड़ा बच्चा है, आप उनके नजदीक जाकर वो दिव्य गुण का स्वरूप बनिए। इसे ईश्वर कहते हैं बच्चे सही कला वो है जब हम स्वमान का स्वरूप बने। स्वरूप मतलब वो फीलिंग में लेकर आए, जैसे कोई व्यक्ति डांस करता है ना तो उसके स्वरूप में आता है। कुछ दिव्य गुण जो मुझे बहुत अच्छे याद आते हैं, जो मैं आपकी स्मृति में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, और जैसे जैसे मैं दिव्य गुण बताऊंगा ना तो आप उसको फील करते जाना। कहते हैं सर्व गुणों की जो जननी है वो है पवित्रता, पवित्रता, शुद्धता, रमणीकता, संपूर्णता, संपन्नता, सत्यता, निरअहंकारिता, निश्चिंतता, निपुणता, कुशलता, अंतर्मुखता, गंभीरता, श्रेष्ठता, स्वच्छता, राइट, फिर सहनशीलता, सरलता, धैर्यता, निर्माणता, निर्भयता, निडरता, यथार्थता, सरलता, दृढ़ता, सहनशीलता, राइट, फिर है हर्षित मुक्तता, प्रसन्नता, मधुरता, संतुष्टता, सफलता, गुणग्राहिता। जब ये दिव्य गुण मैं बोल रहा हूं तो आपको कैसा लग रहा है सुनकर? सुनकर कितनों को अच्छा लग रहा है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड। अगर ये सारे दिव्य गुण अगर किसी व्यक्ति में हो तो वो कैसे लगेंगे? राइट, बहुत अच्छे लगेंगे। और जस्ट इमेजिन करिए, वो सारे दिव्य गुण अगर आप कलाकार में आ गया तो कैसे लगेंगे? हाँ, वाह, कितना अच्छा ना, वेरी गुड। जैसे हम लोग कलाकार जो होते ना, ऑटोग्राफ के लिए जाते हैं। जैसे जब आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे ऑटोग्राफ के लिए, और आप ऑटोग्राफ सबको साइन करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑलवेज बी, और अपना साइन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ऑटोग्राफ हम जो देते हैं ना, ये क्वाइट पॉसिबल है जीवन के रंगमंच में ये हमेशा मैं ऑटोग्राफ देने के लायक रहूं, ये कोई गारंटी नहीं है। राइट, तो क्या करना चाहिए? हम अपने हर दिन अपने जीवन का ऑटोग्राफ स्वयं को दे। और जो कलाकार अगर हर दिन अपने आप को ऑटोग्राफ देना, वो जिंदगी भर उसकी कला को लेकर वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। और विशेष तौर पर राइट, अभी का जो समय जो चल रहा है, आने वाले जो सेशंस में आपको बताया जाएगा, अभी का ऐसा समय है जहां पर हम लोग कलाकार देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए ऑटोग्राफ ले। आप देखेंगे कुछ कलाकार का अगर फेसबुक देखेंगे ना, तो वहां कॉम्पिटिशन चलता है, हाउ मेनी लाइक्स आर देयर, और वो बताएंगे। साउथ इंडियन फिल्म एक्टर्स में मैं देखता हूं कि उनके फैन क्लब होते हैं, और फैन क्लब में वो फेसबुक में अपलोड करते रहते हैं, आज इस फिल्म एक्टर का फेसबुक फॉलोइंग इज सो मेनी लैक्स, दूसरा फिल्म एक्टर का फेसबुक फॉलोइंग इज सो मच। लेकिन मैं आप सभी को बताता हूं, अभी का ऐसा समय चल रहा है कि हम ये नहीं चाहें कि लोगों की दृष्टि हम पर पड़े। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर लोगों की नजर पड़ जाए तो भारत की संस्कृति में फिर नजर उतारना भी पड़ता है। तो जब नजर उतारना पड़ता है तो किसी की नजर ले हम क्यों? इसे मैं अपने एक भाई से बहुत अच्छी बात सीखा। उन्होंने कहा, स्वामी भाई, कभी भी ये फील नहीं करना कि लोगों की नजर अब हम पर पड़े, लेकिन हमेशा यह फील करें कि परमात्मा जो परम कलाकार है, उनकी दृष्टि, उनकी नजर मुझ पर जरूर पड़े। जोर से तालियां बजाइए। ठीक है, तो आप यहां पर आए हो ना, तो एक एक्सरसाइज मैं जरूर आपको कराऊंगा। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सीधे बैठे सभी, हाँ, जब मैं कहूंगा वन, अगर आज तक अगर लोगों के कुछ नेगेटिव वाइब्स आए हैं, वाइब्रेशंस आए हैं, कभी कभी आप बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लोगों को आपके प्रति शायद ईर्ष्या हो भी सकती है। हर व्यक्ति तो राज्यों का अभ्यास नहीं करता ना, हर व्यक्ति इतना शुभ वाइब्रेशंस नहीं है। अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखना, और सुरक्षित रखना लोगों के इस नेगेटिव वाइब्रेशन से, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक सुरक्षा कवच है। तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं कहूंगा वन, अगर लोगों की नजर इतना तक हम लोगों ने प्राप्त करने की कोशिश की, उसमें नेगेटिव वाइब्स भी हो सकते हैं, तो अगर मैं कहूंगा वन, उस सारे गलत नजर को जब मैं कहूंगा वन, इस तरीके से झटक देना, और जब मैं कहूंगा टू, उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑरा क्लीनिंग। कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए? वेरी गुड, है ना। और ये हर दिन करना, और बच्चों को भी सिखाना, हमेशा वो सुरक्षित रहेंगे। हियर वी गो, वन टू। ये क्या कर रहे हो आप लोग? माताएं तो इतना जोर से क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? हैं? अच्छा, अभी ना ये टीवी लाइव चल रहा है, सारा भारत विश्व देख रहा है, तो अब कुछ है ना, फ्रेंड्स आपको फोन करेंगे, और आप लोग का ऑडियंस का भी फोटो लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो वो अचानक आपको देखेंगे ज्ञान सरोवर में, फिर आपको फोन करेंगे, कहां थे? बोले माउंट आबू में थे। क्या कर रहे हो? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हूं। बोला क्या सीखा? पता नहीं, मुंबई से एक प्रोफेसर आए तो कुछ तो करा रहे थे। बाप रे, क्या हालत है हो जाएगी मेरी, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारे कलाकार भाई बहन क्या समझ रहे हो? तो ना अपने पड़ोसी बहन को ना फोन पे बताना, और उनको कहना, बहन जी पता है क्या कर रहे थे हम लोग, हर दिन सुबह जो घर में आप झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू क्यों लगाते हो? ताकि घर का वेस्ट घर पर नहीं बैठे, उसका बाहर निकालते हो। उसी तरह अपने अंदर जो भी आपने लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश की अपने कला के रूप में, दैट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। आप ये महसूस करिए, मैं निमित्त हूं, आई एम अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, परमात्मा का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूं, जब तक ईश्वर चाहे वो मुझे यूज करे। चलो एक बार करते हैं, अभी बहुत खुशी से करना, वन टू। हाँ, थोड़ा झाड़ू मार दीजिए, नजर हटाइए। हाँ, राइट, चलो, यू आर एब्सोल्युटली सुरक्षित। अब वक्त आ गया है कि ईश्वर की नजर मुझ पर पड़े. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. तो जब मैं कहूंगा वन, तो बहुत जोर से ऐसा ताली बजाना और महसूस करना मैं उस परम शक्ति परमात्मा परम कलाकार को स्पर्श कर रहा हूं. और जब मैं कहूंगा यस, तो महसूस करना उस परम कलाकार से सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सारे वरदान, सारी शक्तियां मेरे पास आ रही है. करेंगे? दैट्स द ब्यूटी. चलो हियर वी गो. वन टू रिलैक्स. एक और बार करेंगे. अब जब आप करेंगे तो आप फील करना कि मैं ईश्वर का एक बहुत अच्छा निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं. जो भी कला मेरे में है, परमात्मा ने कला दी है, मैं इस कला को ईश्वरीय सेवा में यूज करूंगा और परमात्मा के प्रत्यक्ष में सहयोगी बनूंगा. वन यस. रिलैक्स. जोर से तालियां बजाइए. और अभी वो परम कलाकार आकर बहुत अच्छी बात कहते हैं. वो कहते हैं यस, अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ गोल्डन वर्ल्ड. एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी और इस सुंदर दुनिया में राइट ओके एक बहुत 100% प्योर जिसको हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण और संपन्न श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेंगे. ये तो आप आगे आप जरूर सीखेंगे और समझेंगे. लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछता हूं बिकॉज आई ऑल्सो प्ले फ्लूट. तो जब मैं फ्लूट पढ़ने के लिए गया ना तो हमारे जो फ्लूट टीचर ने हमसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. उन्होंने हमसे पूछा कि श्री कृष्ण को हमेशा फ्लूट क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? वैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक महत्व है. और वो जो मेरे जो टीचर थे ना, ही यूज टू प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट्स. क्योंकि मैंने फ्लूट चूज किया तो उन्होंने कहा वाई डोंट यू प्ले अदर, तबला भी है, हारमोनियम भी है, गिटार भी है, सब आप प्ले कर सकते हो. मैंने कहा नहीं पता नहीं, मुझे तो फ्लूट ही सीखना है. तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, अच्छा जानना चाहते हो कि श्री कृष्ण को हमेशा बांसुरी के साथ दिखाते हैं, क्यों बांसुरी के साथ दिखाते हैं? तो मुझे तो जवाब नहीं था, लेकिन मेरे जो फ्लूट टीचर ने बहुत सुंदर जवाब दिया. और उन्होंने ये कहा कि बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स को हमें ट्यून करना पड़ता है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें ट्यून करना पड़ता है, लेकिन फ्लूट एक ऐसा एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है कि जो व्यक्ति स्वयं ट्यून्ड है वो सिर्फ उसको बजा सकता है. राइट? उसको ट्यून करने की कोई जरूरत नहीं. इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण की जितनी महिमा करेंगे उतनी कम है. 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म. अभी मैं जो रायगंज में प्रोग्राम कर रहा था और फिर उसके आगे मैंने काफी जगह प्रोग्राम किया और फिर मैं निरसा झारखंड में भी मैं प्रोग्राम कर रहा था. तो वहां पर मेरा टॉपिक था सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो जो सारे मेरे सामने जो लोग बैठे थे मैंने उनको पूछा, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, इस जहाज के लिए हम लोग मंदिरों में जाते हैं और देवी देवताओं को याद करते, यस और नो? तो सभी ने कहा यस. तो मैंने वो सारे ऑडियंस से पूछा, अच्छा पता लगा, आप ये बता सकते हो कि देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते होंगे? डोंट से आउट ऑफ सिलेबस है, इट इज विद इन सिलेबस. कलाकार भाई बहनों को तो मालूम ही होना चाहिए क्या करते होंगे. जो देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते होंगे, क्या करते होंगे भाई सर? क्या करते होंगे? राजयोग का अभ्यास करते होंगे. वाह, वो अभी करना है भाई जी. क्या करते होंगे? हाँ, देवी देवताएं जो होते ना बहुत स्नेह से आनंद से नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक संगीत. इससे आप देखेंगे भारत में इतनी सारे जो प्राचीन जो संस्कृति है, हर प्रदेश में चले जाइए नृत्य का एक बहुत वंडरफुल है ना ये प्रभाव है और हमारी वो प्राचीन संस्कृति है. मैं आपको थोड़ा सा जस्ट एक 10 मिनट्स विथ यू, मैं बस आपका 10 मिनट लूंगा, लेकिन मैं आपको ना उस तरफ लेकर जाना चाहता हूं और आप देखेंगे वो सुंदर दुनिया कैसी होगी. परमात्मा ने ये बहुत विशेष बच्चों को बताया है. आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए है ना, आपको बताएंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन यहां पे परमात्मा ने, वो परम कलाकार ने कहा कि बच्चे आपको ऐसे श्रेष्ठ देवी देवता जैसे बनना है. और ऐसी सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है. और मैं इनको भी सलूट करता हूँ, वो कलाकारों को जिन्होंने इतनी अच्छी इसको एनिमेशन बनाई। लाइट ऑफ कर दे। सुंदर दुनिया जिसको हम गोल्डन वर्ल्ड कहते हैं, सतयुग कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, जन्नत कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ इडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, जन्नत ओके किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, ऐसी सुंदर दुनिया वो परम कलाकार हम बच्चों के लिए स्थापना कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा? ओके एक चीज जो आप कर सकते, इतनी सुंदर दुनिया आएगी। तो मैंने बच्चों से पूछा आने वाली दुनिया कैसी होनी चाहिए, तो एक बच्ची ने बहुत सुंदर ये पेंटिंग किया। तो मैंने बच्चों कहा बच्चों हर रात के बाद दिन जरूर आता है, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां प्रकृति बहुत सुंदर होगी। तो बच्चों के चेहरे में तो इमोशंस ही नहीं आते। मैंने कहा बच्चों कैसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। वो सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर वो दुनिया कब आएगा सर? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी ऐसी सुंदर दुनिया। और उस सुंदर दुनिया की स्थापना के लिए आप कलाकारों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन डू। क्या करना है? आप खुशी के संदेश वाहक बनकर सारे विश्व में आप सद्भावना लेकर आ सकते हो। मैंने ये देखा है जो कला जो होती है ना, इट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स। चाहे वो देश हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, आप कहीं पर भी अपना कला को लेकर जा सकते हो। आप देखेंगे भारत के कितने कलाकार फॉरेन में जाते हैं और कितना लोग उनका अनुभव करते हैं। तो जब आप वहां पर जाते हो तो एक बहुत सुंदर संदेश लेकर जाना। जैसे संगीत और नृत्य में, चाहे किसी भी कला में, सद्भावना होना बहुत बहुत जरूरत है। आप देखेंगे गीत में भी, राइट, सुर ताल शब्द और भाव के बीच में सद्भावना बहुत जरूरत है। उसी तरह राजयोग हमें क्या सिखाता है, राइट, हमारा मन, मन को कैसे सद्भावना लेकर आना है। और ये मन क्या है, इसको एक डिवाइन कल्चर बनाना पड़ेगा। इसे टीम दिव्य संस्कृति अपने इस आंतरिक मन को, तभी हम जीवन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वो क्या है, हमारे थॉट, हमारे इमोशंस, हमारी एटीट्यूड एंड माई मेमोरीज, हमारे विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण और स्मृतियां। बस एक छोटा सा एक नृत्य बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। और जाने के पहले आप सभी को रामा से जरूर मिलाऊंगा, राइट। रामा की कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। आपको लगता है जस्ट अ कुक्ड अप स्टोरी। और यहां जो भी कलाकार बैठे हैं, अगर हमको लगता है हमारी जीवन में बहुत चुनौतियां हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम जीवन को उस समय कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको अंत में रामा से जरूर जरूर मिलाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक नृत्य को हम देखते हैं। और इस नृत्य से मैं ऑन अ पर्सनल लेवल में बहुत प्रभावित हुआ हूं। किस तरह एक सद्भावना लेकर आए, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। और जब वो सद्भावना होती है तो क्या जीवन में वंडर होता है, अद्भुत जादू बन जाता है। और मुझे विश्वास है कि आपको यह नृत्य बहुत पसंद आएगा।
ललित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंज शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे चिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते।
मैं इस बहन का इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ कराना चाहूंगा। इनका नाम है आनंद शंकर। शी क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और मुझे ऐसा बताया गया कि अभी इंडियन रेलवे में वो सीनियर रेलवे ऑफिसर गेजेट ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इनको मैंने आपके सामने क्यों रखा, सभी कलाकार भाई बहनों के सामने, क्योंकि इन्होंने कला को अपने जीवन में अप्लाई किया, राइट? इनकी विशेषता क्या है, शी इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वो कैंसर से ग्रसित हुए और जब कैंसर से ग्रसित हुए डॉक्टर्स ने कहा कि आपका स्टेज बहुत हाई है और आप कैंसर पे हो, तब उन्होंने उस अपनी कला को अप्लाई किया। और जो राज्यों में यूज किया जाता है कि अब स्वमान का स्वरूप बनना, जैसे जो नृत्य करते हैं ना तो अलग अलग स्वरूप हम अलग अलग रस लेकर आते हैं अपने मुख में ना, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, उसी तरह इन्होंने क्या किया, शक्ति का स्वरूप लेकर आए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और किस तरह से अपने रोग पर पूरी तरह काबू पा लिए हम देखते हैं।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। This is an ode to the mother goddess that most of us in India learn when we are children. I learned it when I was 4 at my mother's knee. That year, she introduced me to dance, and thus began my tryst with classical dance. Since then, it's been 4 decades now, I've trained with the best in the field, performed across the globe, taught young and old alike, created, collaborated, choreographed, and wove a rich tapestry of artistry, achievement, and awards. The crowning glory was in 2007 when I received this country's 4th highest civilian award, the Padma Shri, for my contribution to art. But nothing prepared me for what I was to hear on the 1st of July 2008. I heard the word carcinoma.
ये पूरा आप वीडियो, आप टेड वीडियोस में आप जरूर देख सकते हो। मैं आपको कुछ एक इनपुट जरूर देना चाहूंगा।
यस ब्रेस्ट समथिंग आई नीडेड बाय कीमोथेरेपी क्लाइंबिंग अ मियर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स वाज शीयर टॉर्चर टू समवन लाइक मी हू कुड डांस फॉर 3 hours। हाउ डू यू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द डिस्पेयर एंड द मिजरी ऑफ इट ऑल।
और वो अपना अनुभव सुनाती है, जब कीमोथेरेपी चल रहा था तब भी उसने डांस किया। जो दिखता है वो नहीं होता है, तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि एक शरीर बहुत कमजोर है, बाल सब उड़ गए हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, दिख रहा है लोगों को, लेकिन अंदर वो अदृश्य शक्ति आत्मा है। तो कहती थी मैं कीमोथेरेपी चलते हुए एक कीमोथेरेपी और दूसरे कीमोथेरेपी के बीच में मैं जाकर प्रोग्राम करती थी और मैं ये फील करती थी कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, मन शरीर और चैतन्य शक्ति आत्मा। वो अपने इस एड्रेस करती है, बताती है,
आई वॉन्टेड टू डू वॉज कर्ल अप एंड वीप बट आई कैप्ट एवरीथिंग आई लर्न व्हेन आई वाज 4 ऑन द इमेजरी बट आई नीड फॉर व्हिच आई हैड लर्न फ्रॉम माय मदर व्हेन आई वाज 4 द मेटाफर ऑफ महिषासुर मर्दिनी ऑफ दुर्गा द मदर गॉडेस क्रिएटेड बाय द पैंथियन ऑफ हर 18 आर्म्स बाय महिषा दुर्गा द एपिटोमी ऑफ क्रिएटिव फेमिनाइन एनर्जी और शक्ति Durga, the fearless one. I made that image of Durga and her every attribute, her every nuance, my very own. Powered by the...
So, उन्होंने क्या स्वरूप बनाया? उन्होंने महसूस किया कि मैं शिव शक्ति हूँ, दुर्गा हूँ, और फील किया कि परमात्मा उनके साथ है और वो स्वरूप में उन्होंने नृत्य में कैसे लेकर आए हम देखते हैं।
Symbology of a myth is a story significant. She was also called Simhanandini, the one who rode the lion. As I ride out into the battlefield of cancer, asking my rogue cells to behave, I want to be known as not a cancer survivor, but as a cancer conqueror. I present to you an excerpt of that work, Simhanandini.
किसका स्वरूप बने वो सिंहनंदिनी, किसका चित्र बनाया शेर का, राइट। और अंत में वो एंडिंग कैसे करते हैं, शांत स्वरूप में स्थित होना, शक्ति स्वरूप में स्थित होना, राइट। यही तो हमें राजयोग सिखाता है। और वो पूरी तरह से अपने डांस को अपने जीवन में अप्लाई किए और अपने इस परिस्थिति से पूरी तरह विजयी हो गए। जाते जाते मैं एक छोटा सा होमवर्क देकर वाइंड अप करता हूं, सभी अपना होमवर्क करेंगे, राइट। क्या करूं, जब से प्रोफेसर बनाना ये संस्कार जाते ही नहीं है, होमवर्क दिए बिना इतनी बेचैनी होती है। बस मेरे पास तीन मिनट का टाइम है, होमवर्क इज आपके साथ हम भी जरूर करेंगे। और होमवर्क क्या करना है, आज रात को सोने के पहले एक मिनट लेना और दिल से उस ईश्वर को याद कर आप सोना, ठीक है। कौन भाई बहन ये होमवर्क करेंगे वो हाथ उठाएं, वेरी गुड। और अगर आपके मन में विचार चलेगा कि ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है क्या, बहुत जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने रामा को देखा जिनके हाथ और पैर नहीं है। मैंने रामा के साथ शुरुआत की और मैं रामा के साथ वाइंड अप करता हूं। ऑडियो देंगे प्लीज।
हाउएवर ऑल द एंड द स्टोरी
देखिए,
यह है रामा बिगिंस।
चित्र किसका बना रहे, संपूर्णता और संपन्नता का, जो दिखता है वो नहीं है।
Wanting to think very people, the jewel than us. However, there is indeed something unique, and that is his power of mind, his will to take actions. Mohit feels beautiful, but just making a cup.
अपनी माँ के लिए चाय, एक कप चाय बनाकर पिला रहा है। माँ के लिए चाय बना रहा है। जब वो चाय बनाकर पिलाता है, माँ का रिएक्शन देखिए।
बस यही कर रहे थे, मम्मी मेरे हाथ भगवान का, अब भगवान फिर ये सब समझाया इसको, क्योंकि ये मेरे हाथ आने जो दे रही है।
लव यू मॉम।
पैरों में भी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं। तो चलिए आप सभी मेरे साथ बोलिए, आई रियली थैंक गॉड फॉर गिफ्टिंग मी अ ह्यूमन लाइफ। आई विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ माय लाइफ। जोर से रामा के लिए तालियां बजाइए। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आप अपने जीवन को बहुत हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ मंगलमय बनाइए, लाइफ को सेलिब्रेट करिए, राजयोग इस विधि को अपने जीवन में अपनाइए। और जाने के पहले हम दो मिनट ओके ईश्वर की याद में बैठेंगे। बस दो मिनट में आपका लूंगा। और क्या करना है, जब भी आप देश विदेश में जाएंगे आप ये फील करना कि आप ईश्वर के देवदूत हो, शिव परमात्मा के बहुत सुंदर संदेश वाहक हो, और आपको परमात्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय और उनको प्रत्यक्ष सारे विश्व में करना है। परमात्मा के झंडे को हमेशा याद रखना और फील करना वो आपके साथ हमेशा है, और परमात्मा को आप सारे विश्व में प्रत्यक्ष कर रहे हो। आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। दो मिनट याद करते हैं बाबा को।
तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा, तुम संचित स्नेह शक्ति संपदा।